दोनों जरूरी है। अपने को दोनों में रखने की आवश्यकता है। ऐसा समय आवे तो आदमी अकेले विवाह जाए और भगवान में मन लगा रहा है, चाहे काली को बलि दे चाहे कुछ भी असर ना, ऐसा बनना चाहिए। तो श्रवण करते थे, देखिए यहां लिखा गया श्रवण स्मरण गुण विवरण, श्रवण करते थे, स्मरण के लिए तो कोई बाधा थी नहीं, और गुण विवरण, विवरण का अर्थ वर्णन, गुण विवरण, भगवान के पद भी गाते थे, नाम गाते थे एकांत में होने पर। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद जुगल दोनों चरण कमल को मन में बिल्कुल पकड़ लिए थे, कभी विस्मृत नहीं होता था। और आत्मा प्रतिघातम आशंक माना, अपनी भक्ति में प्रतिघात की आशंका करके अपने को कभी भी अच्छा या पढ़ा लिखा जनकार समाज में नहीं साबित किए। अगर ये पता चल जाता कि बहुत जानता है तो लोग पकड़ कर ले जाते हैं, ये विवाह कर देते। पहला इन्होंने ये उपाय किया कि हमारा विवाह न होने पाए। तो ऐसे व्यक्ति को कौन पूछेगा, कोई विवाह करने के लिए आया नहीं। पहले जानते थे कि जब एक पशु में मैं आसक्त हो सकता हूं तो स्त्री में कितना आसक्ति होगी। तो प्रतिघातम आशंक माना, हमेशा डरते थे कि हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी, प्रतिघात हो जाएगा हमारे साधन भजन पर, इसलिए अपने को बेवकूफ जैसा लगाए दिखाते थे। भगवत अनुग्रहण अनुस्मृत पूर्व जन्मावली, स्वपूर्व जन्मावली, और भगवान की पूजा किए थे राजर्षि भरत के शरीर में, इसलिए भगवान की कृपा से इनको अपने पूर्व जन्म की सारी बात याद थी। इस तरह मेरा प्रतिघात हुआ था, इस तरह भक्ति मेरी नष्ट हुई थी, इसलिए बहुत सावधान थे। तो आत्मान उन्मत्त जदांत बधिर स्वरूपेण दर्शयामास लोकस्य, लोक में अपने को दिखाते थे उन्मत्त की तरह। उन्मत्त कहते हैं ग्रह या बात रोग से जो पीड़ित, ग्रह मतलब भूत। कभी कभी मनुष्य को भूत लग जाता है तो उसमें जो भी बोलता है या देखता है हंसता है तो अपने नॉर्मल कंडीशन में नहीं रहता है, भूत ही उसके मुख से बोलता है, वो देखता है या हंसता है। यदि कोई पागल आदमी हंसता भी है तो लोग बहुत चिंतित होते हैं, अरे बहुत हंस रहा है, वो हंसो चाहे रोए सब एक समान, उसको ग्रह बाधा से बाधित व्यक्ति कहते हैं, भूत प्रेत से, वात रोग से। तो इसी तरह अपने को हमेशा दिखाते थे। हमारे यहां एक कहावत है, लोग कहते हैं नीक गीत गाइड में दरबार भर के जाए। पहले ऐसा होता था कि जो लोग बहुत अच्छा गीत गाते थे तो उनको पकड़कर राज दरबार में लोग ले जाते थे कि राजा को गीत सुनाओ। राजा गीत सुनने के शौकीन होते थे। आजकल के राजा तो ये गीत सुनना ही नहीं चाहते। तो पहले के राजा लोग बड़े बड़े कलाकारों को बुलाते थे गीत सुनने के लिए, तो पता लगाते थे कि सबसे अच्छा गायक कौन है, कौन अच्छा गा रहा है, तो राजा की आज्ञा होती थी लाओ उसको। तो कोई व्यक्ति था उसने कहा भाई अगर अच्छा गीत गाएंगे तो दरबार में पकड़ कर जाएंगे, तो हम अच्छा गाऊंगा ही नहीं, इसलिए नीक गीत गाए में दरबार भर के जाए, हम अच्छा नहीं गाएंगे, जान बुझ कर अच्छा नहीं गाएंगे, इसलिए हमको दरबार में पकड़ कर नहीं ले जाएंगे। इन्होंने सोचा कि अपने को मैं अच्छा कहूं दिखाऊंगा नहीं, पढ़ा लिखा दिखाऊंगा नहीं, समझदार दिखाऊंगा नहीं, इसलिए लोक में किसी काम का मैं नहीं रहूंगा, हमारे पास कोई बैठेगा भी नहीं। और वास्तव में वे शौच होकर के अंग भी नहीं धोते थे, इतने गंदा रहते थे कि उनके पास कोई बैठ नहीं सकता था। हम लोग सुने हैं कि गौर किशोर दास बाबा भी ऐसे ही स्थान में रहते थे कि दूसरे लोग वहां जाते ही नहीं थे। क्या जरूरत हो, क्या देंगे किसी भक्त को, बल्कि उसके कृष्ण कॉन्शियसनेस भी छीन लेंगे, उसका चित्त बहिर्मुख हो जाएगा। इसलिए अपने को इस रूप में दिखाते थे उन्मत्त जड अंध और बधिर, चार रूप में। कोई उनको कपड़ा भी देता था कि ये लो धारण कर लो, तो उसको पैर में लपेट लेते थे, ये फेंक देते थे। ऐसे दिखा जैसे इसको पता ही नहीं कपड़ा कैसे पहना जाएगा, क्या किया जाएगा, और पूरे लोग कपड़ा लपेटे रहते थे, कॉपिंग भी नहीं पहनते थे, एक कपड़ा लपेटे रहते थे। और कपड़ा 6-7 महीने का बिना धोए आगे बढ़ना आएगा, कुटता वृत कटी, उनकी कटी आवृत रहती थी कपड़े से बस। और कैसा कपड़ा था, कुपट कुत्सित पट, उसमें मलमूत्र लगा हुआ और कई महीनों का कई वर्षों का गंदा कपड़ा बस बांधे रहते, नहाते कभी नहीं, एक दिन भी नहीं नहाते, क्यों वो शरीर से बिल्कुल परे थे। इस शरीर के स्नान आदि का असर आत्मा पर नहीं पड़ता है, आत्मा चिन्मय है, स्पिरिचुअल है। आप जड़ पदार्थ को धोइए चाहे नहलाइए, इसे आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता, आत्मा इससे परे और भी आत्मा के स्तर पर थे। इसलिए शरीर की शुद्धि रखना, सजाना, यहां तक तो शरीर को काटा जाता था तब उनको पता नहीं चलता था, न सर्दी का पता चलता था न गर्मी का, इनको पता ही नहीं था कि कब गर्मी का मौसम आया, कब सर्दी का आया, कौन मेरा अपमान किया, कौन मेरा मान किया, कुछ भी अनुसंधान नहीं, केवल भगवान में चित लगा था। इस तरह से अपने को एक जड़ अंग बधिर दिखाते। आज के युग में तो कोई वास्तव में अभी जड़ अंध बधिर है तो लोक में दिखाएगा नहीं नहीं हम बिल्कुल फिट हैं और फिर लोग हमको जितना मान करे, जितना लोग हमारे साथ जुटे, हमारा फोटो खींचा जाए झुंड के साथ बड़े बड़े लोगों के साथ, आज का युग तो ऐसा हो गया तो कोई अपने को जड़ अंध बधिर दिखा नहीं सकता। जहां पर्पस इतने क्लियर है कि हमारे कृष्ण की भक्ति बढ़ानी है, हमें और कोई मान सम्मान लेना नहीं है, लेना नहीं। एक बार राजा होकर के देख चुके थे, राजा भी साधारण राजा नहीं, सारा संसार इनका दास था, उस पद पर भी रहकर देख चुके हैं, सारी बातें इनको याद आती हैं कि वह राज वैभव या वह मान सम्मान और वह संसारिक एडजस्टमेंट क्या कर पाया हमको, इसे क्या लाभ हुआ हमको, कुछ भी नहीं लाभ हुआ। जब मैं वन में गया, भगवान की भक्ति किया, लेकिन आसक्ति से गिर पड़ा, इसीलिए अब मैं हो गया। जो व्यक्ति भोगों के लिए लालायित है, इसका मतलब ये सोचता है कि ऐसा भोग कभी पहले मिला नहीं था, मिला है मानव शरीर खुद भोग लो, पता नहीं ऐसा चांस मिलेगा या नहीं। लेकिन राजर्षि भरत तो देख रहे थे कि हमको कितना बड़ा चांस मिला था और उसको मन की तरह छोड़ चुके थे। तो हम लोग तो देह के धरातल पर हैं और कथा सुन रहे हैं देहातु पुरुष की, इसीलिए अपने मन को धीरे 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 चढ़ा करके वहां उठा करके उनको देखना चाहिए। हम लोगों की आदत क्या है कि हम अतीत की घटनाओं को अपने संदर्भ में उतार कर देखना चाहते हैं, यही गलती हो जाती है और हम समझ पाएंगे नहीं। हमको वहां उठ करके देखना चाहिए कब की घटना है, किस वातावरण में हुई थी, लेकिन हम लोगों की आदत है कि प्रत्येक घटना को हम अपने वातावरण में ढाल करके देखना चाहते हैं। वो प्रश्न पूछने के लिए कहते हैं तो उस प्रश्न आ जाता है एकदम संघ पर, तो अपने मन को जरा ले चलिए उस स्थिति पर, राजर्षि भरत की दशा पर, तब वहां समझने का प्रयास कीजिए। उसको पूरा समझने के बाद तब हमें जितना एडजस्ट करना होगा अपने लिए करें, उन पहले वस्तु को समझना आवश्यक। सुनो प्रभुपाद जी जब विदेश में गए तो कुछ लोगों ने कहा कि स्वामी जी आप इतने नियम करेंगे, इतने नियम करेंगे तो आपकी बात कोई नहीं मानेगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कोई माने या न माने, जो स्टैंडर्ड है उनको मैं कहूंगा, नो इंटीट्यूड, नो गैमिंग, नो इंटोक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, ये तो मैं मुझे कहना ही है। अगर मैं उसे भी छोड़ दूंगा तो प्रचार क्या करूंगा। वो जो स्टैंडर्ड होता है वो तो क्लियर कहना चाहिए। और यदि कोई भागवत का वक्ता है, रियल भागवत कह रहा है, तो उसे तो उस स्थिति को क्लियर करना चाहिए। जिस समय व्यक्ति भागवत कहता है उस समय वास्तव में वह किसी खास संस्था में बंधा हुआ नहीं होता है, वह भगवान वेदव्यास देव का प्रतिनिधि होता है। उसे ईमानदारी से बोलना चाहिए, सही सही शास्त्र को सामने करना चाहिए, तब लाभ हो सकता है जनता को। तो आज के संसार में फैशन हो गया है और कुछ लोग सामने पर बसता भी है, वो जो बोलेंगे तो निश्चित सीमा में ही उनको बोलना, वो सही बोल नहीं पाएंगे, वो ठीक ठीक नहीं बोल सकते। तो इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि राजा श्री भरत की जो ये दिव्य दशा है गुणाती, जिसका उल्लेख भगवान ने गीता में किया है 14वें अध्याय में और दूसरे अध्याय में भी, उसका प्रैक्टिकल रूप है राजा श्री भरत। भगवान ने तो थ्योरी दिया है गीता में, गुणाती पहस उच्चते, और जो पूछते हैं किन लक्षणों से पता चलता है कि कोई गुणातीत है, 14वें अध्याय में पूछे, तो भगवान ने उसका उत्तर दिया है। तो उस उत्तर के प्रैक्टिकल होंगे, व्यवहारिक रूप, और इतना आवश्यक है कृष्ण भक्ति, उसके आगे संसार का कोई भी व्यवहार तुच्छ है और छोड़ा जा सकता है। जो व्यक्ति इतना तक नहीं कहा कि मैं राजा श्री भरत था, ये हमको कुछ अच्छा खाने को दो, अच्छा पीने को दो, ये करो वो करो, और सब कुछ ज्ञान है, वह जितने कृष्ण भक्ति के महत्व को समझा था उतना हम थोड़े समझ सकते हैं। हम लोग तो सोचते हैं हम कृष्ण भक्ति करें, लेकिन इसके साथ ही साथ हमको ये सब मिलना चाहिए, बिना खा पी करके स्टैंडर्ड मेंटेन करना, तब हम कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। ये हम लोगों की दशा है, संसार में किसी की भी, लेकिन एक ऐसी स्थिति है भक्ति की उस समय संसार की कोई अपेक्षा नहीं होती, जैसे मृत्यु जन्म की, तो कृष्ण से प्रेम करना है तो करना है, संसार हनुमान दे या न दे, तो कुछ भी कहे, पगली कहे या कुलटा कहे, कुनारी कहे, कुछ भी कहे, तो कृष्ण से प्रेम करना है। तो राजर्षि भरत कितना अनपेक्षित है, तो अपने को जड अंध बधिर के रूप में दिखाना ये बहुत बड़ी बात है, और सब समय भगवान के चरण कमल को हृदय में धारण किए रहते थे और भक्ति पर प्रतिघात की आशंका से भरे रहते थे, मेरी भक्ति नष्ट न हो जाए, मेरा स्मरण नष्ट न हो, भगवत स्मरण इस तरह तपस्या की। अब देखिए ऐसे जड थे अंध थे बधिर जैसे दिखाते थे, फिर भी तस्यति ऐसे पुत्र को भी पढ़ाने की कोशिश की उनके पिताजी, तस्यति। अब ऐसा तो बेकार है इसको पढ़ाना, जो सुन ही नहीं रहा है, देख ही नहीं रहा है, वो किताब दिखाते थे, स्लेट पकड़वाते थे तो जैसे लगता था कि अंधा पकड़ रहा है, कहते थे लिखो तो कुछ नहीं लिख पाते थे, और सब जानते थे, तो पूरा वेद शास्त्र जानते थे, संस्कृत जानते थे, पूरा बोल सकते थे, लेकिन गायत्री मंत्र बताते बताते 4 महीना बीत गया और फिर भी नहीं जानता। पिताजी कहते थे बोलो ओम तो कुछ नहीं बोलते, वो जानते थे कि आज उपदेश मिल रहा है, आज यदि उनके उपदेश को फॉलो करता हूं तो कल और ज्यादा उपदेश देंगे और सिखाने लगेंगे, सिखाते 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 बस घेड़ी आएगी, गठबंधन करा देंगे और मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी, ये ऐसा नहीं करूंगा। और पिताजी चाहते थे कि कम से कम ब्राह्मण का बेटा है तो वेद पढ़े, कैसे जिएगा कैसे खाएगा, तो भक्त तो थे वो भी, लेकिन भक्तों को भी चिंता होती है कि हमारा पुत्र कैसे रहेगा, कैसे जिए रखाएगा, इस तरह से रहेगा। वो सबसे छोटे बेटा थे इसलिए और भी ममता थी, छोटे पुत्र में माता पिता की अधिक ममता होती, इसलिए और ममता थी। और इस तरह से जब बच्चा बेचारा बेकार हो गया तो पिता को बहुत चिंता हो रही, तो पिता का हृदय होता है इसलिए ऐसे जड़ पुत्र को भी पढ़ाने की कोशिश किए, बहुत प्रयास किए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते तस्य अपि ऐसे जड़ का भी आत्मजस्य विप्र पुत्र स्नेहानुबद्ध मना
आसमन वर्तमान संस्कार जथस देशम दुर्धान उपनीतस्य च पुनः शौचाच मुनादि कर्म नियमान अनभिप्रेतन किसम शिक्षक अनुशिष्ट नहीं भाद्यम पितु पुत्र नई। पिताजी सोचते थे कि पितु हो अनुशिष्टेन पुत्रेण भाद्यम ही। पिता का कर्तव्य है अपने पुत्र को शिक्षा देना और शिक्षित पुत्र को ऐसा करना चाहिए। पुत्र को शिक्षा देगा पिता, पिता प्रथम गुरु है और पुत्र को ऐसा करना चाहिए। तो आ समय वर्तमान संस्कारण तथोपदेशम दुर्धान, जहां तक समावर्तन संस्कार होता है, संस्कृत में समावर्तन संस्कार का अर्थ होता है ठीक से नहाना खाना जीना, सम आवर्तन। एक समावर्तन संस्कार है जो उपनीत उपनयन दिया जाता है तो वो किया जाता है, उपनयन कहते हैं जनेऊ देने को। तो किसी भी तरह से ब्राह्मण का बच्चा था तो जनेऊ दे दिए उपनीतस्य, जनेऊ धारण करने में कोई दिक्कत थी नहीं, जनेऊ धारण किए। यद्यपि गायत्री सिखा रहे थे, जनेऊ धारण करा करके और गायत्री पढ़ाना चालू किए और शौच आचमन आदि सिखाए कि देखो इस तरह से कुल्ला किया जाता है, कुल्ला करके बोलो बेटा श्री विष्णु जल को सिर पर डालो। तो उनको पानी दिया जाता है तो पानी लेकर फेंक देते थे, जब सिर पर डालने को कहा जाता था तो नीचे फेंक देते थे, और जल को वृक्ष से सटाने के लिए जब वो देते थे तो ऐसे कर लेते थे जानबूझकर। वो आचमन तक नहीं सीख पाए कि खाने के बाद मुंह धोया जाता है। पिताजी भेजते थे लोटा में पानी देकर के कि जाओ शौच हो आओ, तो पानी को पहले ही गिरा देते थे, ऐसे ही आ जाते थे। फिर भी पिता का हृदय होता है वो कई वर्षों तक लगे रहे पुत्र को सिखाने, वो नहीं सीख रहा था। दूसरा आदमी तो तुरंत बाज आ जाएगा, हटो अब क्या करें, लेकिन पिताजी थे वो सिखाने पर पड़े। तो शौच आचमन, शौच मतलब शुचि रहने पर ही हम स्नान सिखाते थे कि बेटा इस तरह से स्नान करना चाहिए, तो स्नान करने के बाद आने के बाद धूल में बैठ जाते थे, कभी आसन पर नहीं बैठते थे, धूल में बैठते थे बैल की तरह, कभी आसन पर नहीं बैठे। और इनका शरीर पूर्ण स्वस्थ था, कोई दुर्वासना मन में थी नहीं, इसलिए कुछ भी खाते थे तो अमृत जैसे शरीर को फायदा करता। पूरा गठीला अंग था और बहुत सुंदर थे और भरी जवानी थी, संघनन अंग था, बहुत तेजस्वी थे, लेकिन नहीं नहाने से इनका शरीर बहुत मैला दिखता था और जनेऊ तो ऐसा हो गया था कि उस पर स्याही बैठ गई थी, इसी से चोर लोग नहीं पहचान पाए कि ब्राह्मण है। अगर देखे होते जनेऊ बढ़िया से तो उनको नहीं ले गए रहते भद्रकाली के, लेकिन देखे नहीं, ध्यान दिए नहीं, जनेऊ काला हो गया था, वो चांद का जनेऊ लगता था, सूत्र का नहीं, ऐसा काला हो गया था। तो बहुत पिताजी सिखा रहे थे शौच आचमन आदिन कर्म नियमान, कर्म के जो नियम है वो सब सिखा रहे थे। तो पिताजी को एक चिंता थी कि कोई भी ब्राह्मण आएगा तो इसका विवाह नहीं करेगा, इस तरह से बताओ लड़का हमारा हो गया, हाय राम कैसे अच्छा होगा। तो सोचते थे अच्छा आज 10 बजे तक पढ़ा करके हार गए तो फिर 2 बजे से चालू करते थे, फिर कल चालू करते थे, पढ़ाते थे लिखाते थे, कुछ भी नहीं सीखे। समशिक्षक चूंकि पिता थे इसलिए सम्यक शिक्षा दे रहे थे, और यही सोच करके कि पिते हो अनुशिष्टे न पुत्र इति भाव्यम, पिता के द्वारा शिक्षित पुत्र के द्वारा यह सब करना चाहिए। तो भगवान ने बहुत बहुत हृदय बनाया है, लेकिन वास्तव में माता पिता का जो हृदय बनाया है इस संसार में, तो वहीं से भगवान के हृदय का पता लगता है। यदि भगवान को समझना हो तो माता पिता के हृदय को हमें समझना चाहिए कि भगवान कितना दयालु है, कितना स्नेहवान है जीवों के प्रति, इसकी थोड़ी सी झलक, इसका नमूना माता पिता के हृदय में भगवान ने दिया है। ईश्वर किस तरह से दयालु है। भगवान ने इसको स्वीकार किया है कि इस संसार में यदि सच्चा प्रेम है किसी के प्रति तो है माता पिता का। और गोपियों की सभा में भगवान ने इसको बताया, रासलीला में गोपियों ने पूछ दिया कि हम आपसे प्रेम करती हैं लेकिन आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, कुछ लोग नहीं प्रेम करने वाले से भी प्रेम करते हैं, कुछ लोग दोनों से नहीं करते। आप कौन हैं? भगवान का दोष उनके मुख से स्वीकार कराना चाहते थे। आप किसने? हम तो सब कुछ छोड़ करके आपसे प्रेम की, हमने अपना पति छोड़ा, घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, और आप ऐसे निर्दयी निकले कि हमें छोड़ करके भाग। आप कौन हैं? भगवान ने कहा मैं तीनों में से कोई नहीं हूं। उन्होंने कहा, वो बहुत बड़ी कथा, लेकिन भगवान ने कहा कि देखो जब नहीं प्रेम करने पर भी प्रेम करते हैं वो निश्चित ही धर्मात्मा है और वहां पर सौहार्द है। तो उसमें भगवान ने उदाहरण दिया है माता पिता का, स्त्री पुरुष के प्रेम का उदाहरण भगवान ने नहीं दिया है, माता पिता के प्रेम का उदाहरण दिया है। कि माता पिता का जो संतान के प्रति प्रेम है वह वास्तव में स्वार्थ से रहित है। जो गर्भ में माता धारण करती है और छोटा बच्चा होता है उसका मल मूत्र साफ करना, पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, इसमें कौन स्वार्थ है? कोई स्वार्थ नहीं है। यहां तक कि बच्चा बड़ा हो जाता है फिर भी माता पिता उससे कोई अपेक्षा नहीं करते। जब असहाय हो जाते हैं बुढ़ापा में तब कुछ अपेक्षा करते हैं कि हमारी सेवा करें। वहीं पर भगवान का हृदय थोड़ा थोड़ा प्रकट है, उस द्वार से भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जहां पारिवारिक अफेक्शन नहीं है, पारिवारिक स्नेह नहीं है, वहां भगवान के स्नेह को समझना बड़ा कठिन है, यह निश्चित है। यहां पर हम लोग एक पिता का हृदय देख रहे हैं कि जो बेटा सीख ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं सीखा, कखन घर तक नहीं सीख सका, फिर भी वो कई वर्ष तक सिखाते रहे और अनभिप्रेता न अपनी कर्म नियमन के विषय में कह रहे अनभिप्रेता ने, जब भरत जी नहीं चाहते थे सिखाना फिर भी पिताजी सिखा रहे थे। और वास्तव में जब भरत जी के लिए सब आवश्यक नहीं थे, वो बहुत ऊंची स्थिति पर थे, परंतु पिताजी उनकी स्थिति को समझते नहीं थे, वो सिखाने का प्रयास कर रहे थे। सच अति पितृ संधव असभ्य छिन्न यश्म करोति, पिताजी को सिखाते थे लेकिन जड़ भरत जी कैसे सच अति जड़ भरत जी भी पितृ संधव पिता के सामने ही उत्पटांग काम करने लगते थे, सिखाने से ठीक विरोध असभ्य छिन्न किया, अनुचित जैसे करने लगते थे। इव शब्द लगाकर सुखदेव गोस्वामी यह कहना चाहते हैं कि वास्तव में वो अनुचित नहीं था जड़ भरत जी के लिए, वही उचित था। जो बहुत ऊंचा उठ चुका है उसको छोटे छोटे नियम में क्या बांधना है? लेकिन पिता की दृष्टि में वे असमीचीन असदृचीन कर रहे हैं, उचित नहीं कर रहे हैं। तो पिताजी ने सोचा कि छंदांसी अध्यापय वेद पढ़ाने के लिए, छंदांसी मतलब वेद, वेदों का अध्ययन कराने के लिए पहले वे गायत्री पढ़ाना चालू किए, सह व्याहृति भी भूर भू सह, इसको व्याहृति कहते हैं। और सावित्री का अर्थ है गायत्री, सविता के विषय में जो मंत्र है उसको सावित्री कहते हैं। सविता मतलब भगवान सूर्य या भगवान विष्णु, मुख्य रूप से भगवान विष्णु अर्थ है जिन्होंने जगत को उत्पन्न किया है, तो उनका जो मंत्र है उसको सावित्री कहते हैं। सविता का वर्णन करने वाला जो मंत्र है उसको सावित्री कहते हैं, गायत्री। तो गायत्री में तीन पद हैं, सभी लोग जानते हैं जो गायत्री मंत्रणीय है जानते हैं, इसमें तीन पद हैं, इसको त्रिपदी कहते हैं। और प्रणव जो है इसमें सिर होता है, ओम, यह उसका सिर माना जाता है। तो सब प्रणव सिर त्रिपदी सावित्री, गायत्री के लिए सब शब्द दिए जा रहे हैं। तो तीन पद वाली और गहती के साथ प्रणव जिसका सिर है, ओम जिसका सिर, ओंकार जिसका सिर है, ऐसी गायत्री को भी पहले पढ़ाना चाहिए। वेद पढ़ने से पहले गायत्री मंत्र जपना आवश्यक है। तो पिता की इच्छा थी कि कम से कम एक पंडित बना देते तो अपना खा कमा कर लेता कहीं कथा बाँच करके या कुछ भी करके, वैसे तो क्या होगा इसका, कुछ वेद पढ़ लेगा कम से कम सत्यनारायण भगवान की कथा भी तो कहेगा। ब्राह्मण की जीविका यही है। अब के ब्राह्मण तो सब काम करने लगे, जो पहले के ब्राह्मण वेद पढ़ते थे। उन्होंने सोचा कि पहले वेद पढ़ाने के लिए इसको गायत्री पढ़ा दूं तो ग्रैष्म बासंतिकान मासन अभियमानो, ग्रैष्म और बासंतिक मासन चार महीने पढ़ाए, ग्रीष्म ऋतु में और बसंत ऋतु में, मतलब चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़, चार महीना गायत्री पढ़ाए और 12-12 घंटा से ज्यादा ही पढ़ाते होंगे एक एक दिन, लेकिन फिर भी अधियमानम अति पढ़ाने पर भी जद भर जो असंवेक रूपम ग्राह्यमास, याद किए लेकिन पूरा पूरा नहीं, असंवेक रूपम, समवेत याद नहीं किए। पिताजी पूछते थे याद हो गया बोलो बोलो बोलो, तो वो तो असंवेत रूप का मतलब ये है कि उच्चारण बिल्कुल भिन्न करते थे और उसके तीन पदों को पकड़ भी नहीं पाते थे, न ओम बढ़िया से कह पाते थे, न भू कह पाते थे, न कुछ भी धियो प्रचोदया कुछ भी नहीं कह पाते थे। धिया भगे बोलो 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 कभी कभी पिताजी डांटते थे, छड़ी दिखाते थे बोलो, वो भी बेवकूफ थे वास्तव में, उनको ये समझना चाहिए था कि ये बहुत ऊंचा परमहंस है, ये छोटे छोटे नियम इसके लिए क्या जरूरी है, लेकिन वो पिताजी समझ नहीं रहे, उनका दुराग्रह था, वो ग्रहण कराते थे। तो ग्रहण कराते कराते चार महीने में भी अधियमानम अपि असंवेत रूपम ग्राह्यमास, ग्रहण करा पाए लेकिन अधूरा, उच्चारण और मंत्र दोनों की दृष्टि से ग्रहण नहीं करा पाए। तो यह अज्ञ पिता का अंधा स्नेह था, जो स्नेह अपने पुत्रों से करना चाहिए लेकिन पुत्रों को भी समझना चाहिए कि वो किस स्थिति में है। अगर कोई भक्त बनना चाहता है तो उसे छूट दे देनी चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम भी प्रवृत्ति में पढ़ो तुम भी आओ इधर, कई पुत्र होते हैं, अगर किसी के कई पुत्र हो तो एकाध पुत्र को अगर वह निवृत्ति वाला है तो उसे छोड़ देना चाहिए। जब भरत जी के पिता की तरह आग्रह नहीं करना चाहिए कि नहीं तुम भी इसी प्रवृत्ति मार्ग में रहो, तो ऐसे दुर्लभ होते हैं, कुछ पुत्र होते हैं जो जिनकी प्रवृत्ति नहीं होती है संसार में, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं प्रचार करना चाहते हैं, तो उन पर ये आग्रह नहीं करना चाहिए। इन पिताजी आग्रह कर रहे थे तो एवं स्वतनुजे आत्मनि अनुरागा वेषित चित्त शौच अध्ययन व्रत नियम गुरु अनल सुशीर्षण आदि अपूर्वाण कर्माणि अनभिजुक्तान्यपि समूह सृष्टेन भाव्यमिति असदाग्रह पुत्र मनुष्यास स्वयं तावत अनधिगत मनोरथ कालेन अप्रमत्तेन स्वयं गृह एव प्रमत्त उपसंग। इस तरह अपने तनुज में ही उनका चित लगा हुआ था, जट भरत में ही चित लगा रहता था, 24 घंटे उनके पिताजी का, जट भरत जी के पिताजी का मन उनमें लगा रहता था, यह भी उनका भाग्य था, एक वैष्णव में चित लगा था। तो आत्मनि अपने में चित लगा था, अपने मतलब पुत्र जो होता है पिता का स्वरूप माना जाता है, आत्मा वो जायते पुत्र, श्रुति कहती है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है, पति ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है, पुत्र में और पिता में कोई भेद नहीं है, इसीलिए पत्नी को जाया कहते हैं, जाया का अर्थ होता है जिसके गर्भ से पति स्वयं जन्म लेता है, पुत्र को पिता का प्रतिनिधि माना जाता है, इसलिए यहां आत्मनि शब्द का प्रयोग है। स्वतनुजे आत्मनि राग अनुराग वेषित चित्त, अपने ही स्वरूप अपने पुत्र में अनुराग से उनका चित्त आवेशित था, बेटा में मन लगा हुआ था, बेटे के विषय में सोच रहे थे, अपने विषय में भूल गए, और वो भी क्या सिखा रहे थे, शौच अध्ययन व्रत नियम गुरु अनल सुशीर्षण, कैसे साफ सुथरा रहना चाहिए, कैसे स्नान आदि करना चाहिए और कैसे वेद पढ़ना चाहिए, व्रत धारण करना, नियम और गुरु की सेवा, आचार्य की सेवा और अमल हवन करना, आज किसका सेवन करना, गुरुजनों का सेवन करना, अपकुर्वाण कर्माणी। अपकुर्वाण कहते हैं विवाह से पूर्व जो भी कर्म होते हैं ब्रह्मचारी के, वो सब बेचारे सिखा रहे थे। ये सब सीख लेगा तो विवाह होगा, विवाह होने के बाद अपना तो ये सीख ही जाएगा। अनभिजुक्ता नपी, ये उनके युक्त नहीं थे, उनके योग्य नहीं थे जटभरत जी के, बहुत ऊपर थे, लेकिन फिर भी समूह सृष्टि ने भाग्य नहीं थी, एक सुशिक्षित पुत्र के द्वारा ऐसा करना चाहिए, ऐसा असद आग्रह था इनके पिताजी के मन में। अब सुखदेव गोस्वामी यहां खोल कर कह रहे हैं असत आग्रह।